नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। फेडरिको फैगिन की सिलिकॉन एक आत्मकथात्मक पुस्तक है जो कंप्यूटिंग इतिहास, तकनीकी नवाचार और चेतना संबंधी दार्शनिक खोज को एक ही जीवन वृत्त में जोड़ती है। फैगिन उन प्रमुख इंजीनियरों में है जिन्होंने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में MOS सिलिकॉन गेट टेक्नोलॉजी के विकास और इंटेल में 1971 के इंटेल 4000 पहले वाणिज्यिक माइक्रोप्रोसेसर के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। पुस्तक उनके चार जीवन चरणों का अनुसरण करती है। युद्धकालीन उत्तरी इटली का बचपन, अमेरिका में माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स का काम, जिलॉग और सिनेप्टिक्स जैसे उद्यम तथा चेतना के अध्ययन की ओर उनका बात का रुख। इसका उद्देश्य केवल आविष्कारों की सूची देना नहीं है। फैगिन दिखाते हैं कि तकनीकी प्रगति इंजीनियरिंग कौशल, संस्थागत संघर्ष, जोखिम और व्यक्तिगत दृढ़ता से बनती है। अंतिम भाग में वे अपने आध्यात्मिक अनुभवों और भौतिकवादी चेतना सिद्धांत की सीमाओं पर विचार करते हैं। इसलिए यह संस्मरण तकनीकी इतिहास और चेतना दर्शन के बीच असामान्य सेतु बनाता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, चार जीवन चरणों के माध्यम से एक आविष्कारक का आत्मचित्र। पुस्तक की संरचना फैगिन के चार परस्पर जुड़े जीवन चरणों पर आधारित है। पहले चरण में युद्ध से प्रभावित उत्तरी इटली में उनका प्रारंभिक जीवन आता है, जो शिक्षा, अनुशासन और तकनीकी जिज्ञासा की पृष्ठभूमि देता है। दूसरा चरण अमेरिका में सेमीकंडक्टर उद्योग के उभार से जुड़ा है, जहां वे प्रयोगशाला के विचारों को उत्पादन योग्य तकनीक में बदलने की कठिनाइयों का प्रत्यक्ष विवरण देते हैं। तीसरे चरण में वे स्थापित कंपनियों के कर्मचारी से उद्यमी बनते हैं और जिलॉग तथा सिनेप्टिक्स जैसे उपक्रमों के जरिए उत्पाद, नेतृत्व और बाजार की अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। चौथा चरण चेतना, स्वतंत्र इच्छा और मानव पहचान के प्रश्नों की ओर मुड़ता है। यह क्रम पुस्तक का मुख्य तर्क भी रचता है कि उपलब्धि को केवल पद, पेटेंट या कंपनी से नहीं समझा जा सकता। फैगिन के लिए बाहरी तकनीकी सफलता के बाद भी अर्थ और अनुभव के मूल प्रश्न बने रहे। आत्मकथा का यह ढांचा पाठक को यह समझने में मदद करता है कि इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और दार्शनिक खोज उनके जीवन में अलग अलग रुचियां नहीं, बल्कि लगातार विकसित होती चिंताएं हैं। फिर भी पुस्तक यह दावा नहीं करती कि तकनीकी प्रतिभा अपने आप चेतना संबंधी निष्कर्षों को सिद्ध कर देती है। बाद के विचारों को फैगिन की निजी और सैद्धांतिक खोज के रूप में पढ़ना अधिक उचित है। दूसरा, MOS सिलिकॉन गेट टेक्नोलॉजी और एकीकृत परिपथों का निर्णायक मोड़। फैगिन पुस्तक में MOS सिलिकॉन गेट टेक्नोलॉजी को केवल एक तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की दिशा बदलने वाले विनिर्माण नवाचार के रूप में रखते हैं। इस तकनीक ने एकीकृत परिपथों में अधिक घनत्व और बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं बढ़ाई, जिससे जटिल इलेक्ट्रॉनिक कार्यों को छोटे और अधिक व्यावहारिक चिपों पर लाना संभव हुआ। फेयरचाइल्ड में उनके काम और सिलिकॉन गेट प्रक्रिया के आरंभिक व्यावसायिक उपयोग का विवरण यह स्पष्ट करता है कि किसी आविष्कार की शक्ति उसके सिद्धांत में ही नहीं होती, उसे विश्वसनीय डिजाइन नियमों, निर्माण प्रक्रियाओं और उत्पादन अनुशासन में ढलना पड़ता है। यही कारण है कि पुस्तक तकनीकी इतिहास को अकेले महान विचारों की कथा नहीं मानती। इसमें समय, सीमा, संसाधनों, सहयोगियों और कंपनियों की प्राथमिकताओं का महत्व उभरता है। पाठक को यह भी समझ आता है कि माइक्रोप्रोसेसर का युग किसी एक चिप से अचानक शुरू नहीं हुआ था। उसके पीछे ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ और निर्माण तकनीकों में वर्षों की प्रगति थी। तकनीकी विवरण कुछ पाठकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, विशेषकर जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स पृष्ठभूमि सीमित है। लेकिन उनका उद्देश्य विशेषज्ञता दिखाना नहीं, यह बताना है कि विनिर्माण की सूक्ष्म बाधाओं को हल किए बिना डिजिटल क्रांति का आधार तैयार नहीं हो सकता था। तीसरा, इंटेल 4000 से व्यक्तिगत कंप्यूटिंग की संभावना तक। इंटेल में फैगिन की भूमिका पुस्तक का केंद्रीय ऐतिहासिक भाग है। 1971 में इंटेल 4000 के निर्माण ने गणना की क्षमता को एक छोटे, अपेक्षाकृत सस्ते और प्रोग्राम योग्य घटक में समेटने की दिशा दिखाई। फैगिन इसे केवल आकार घटाने की उपलब्धि नहीं मानते। माइक्रोप्रोसेसर का महत्व इस बात में था कि एक सामान्य प्रयोजन की नियंत्रण क्षमता अलग अलग उपकरणों में अपनाई जा सकती थी। इसने बाद के व्यक्तिगत कंप्यूटरों, डिजिटल उपकरणों और एम्बेडेड प्रणालियों के लिए आधार तैयार किया। पुस्तक परियोजना की इंजीनियरिंग चुनौतियों के साथ मानवीय पक्ष भी सामने लाती है, जैसे श्रेय, संगठनात्मक दबाव और निर्णायक डिजाइन जिम्मेदारी। इससे लोकप्रिय तकनीकी कथाओं की एक सीमा स्पष्ट होती है, जिनमें जटिल सामूहिक काम को अक्सर कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित कर दिया जाता है। फैगिन अपने योगदान के उचित ऐतिहासिक स्थान पर जोर देते हैं, इसलिए संस्मरण को एक प्रत्यक्षदर्शी का दृष्टिकोण भी समझना चाहिए। इसकी उपयोगिता इस बात में है कि यह आविष्कार को तैयार उत्पाद के बजाय निर्णयों की श्रृंखला के रूप में दिखाती है। इंटेल के बाद 8008, 8080 और अन्य शुरुआती प्रोसेसरों के संदर्भ से यह भी दिखता है कि पहली सफलता को उपयोगी तकनीकी परिवार में बदलने के लिए निरंतर पुनर्रचना आवश्यक थी। चौथा, जिलॉग, सिनेप्टिक्स और प्रयोगशाला से बाजार तक नवाचार का विस्तार। फैगन का उद्यमी जीवन पुस्तक को केवल इंटेल केंद्रित इतिहास बनने से बचाता है। जिलॉग की स्थापना और Z80 माइक्रोप्रोसेसर के विकास का प्रसंग बताता है कि तकनीकी विचार को कंपनी उत्पाद रणनीति और व्यापक उपयोगकर्ता आधार से जोड़ना अलग प्रकार की क्षमता मानता है। Z80 ने आरंभिक व्यक्तिगत कंप्यूटिंग के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान पाया। बाद में सिनेप्टिक्स के साथ फैगन का काम मानव और मशीन के संपर्क बिंदु तक पहुंचता है, विशेषकर आरंभिक टचपैड और टच स्क्रीन तकनीकों के संदर्भ में। इन प्रसंगों से पुस्तक का एक व्यावहारिक पाठ निकलता है कि नवाचार का मूल्य तभी व्यापक बनता है जब वह विश्वसनीय, उपयोग में सहज और आर्थिक रूप से अपनाने योग्य बने। माइक्रोप्रोसेसर गणना को सघन करता है, जबकि स्पर्श आधारित इंटरफेस उस गणना को रोजमर्रा के उपयोग के करीब लाता है। फैगन के अनुभव उद्योग में नेतृत्व की अनिश्चितताओं को भी रेखांकित करते हैं। एक संस्थापक को तकनीकी गुणवत्ता, प्रतिभा, वित्त, प्रतिस्पर्धा और समय के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह भाग किसी सरल उद्यमशीलता सूत्र की पेशकश नहीं करता। इसके बजाय यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक प्रभाव अक्सर कई परियोजनाओं और बदलते बाजारों में फैले निरंतर काम से बनता है। अंत में चेतना को मूल मानने का प्रस्ताव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमा। अंतिम चरण में पुस्तक का स्वर तकनीकी संस्मरण से चेतना दर्शन की ओर बदलता है। फैगन अपने गहन निजी अनुभवों और लंबे अध्ययन के आधार पर भौतिकवादी दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाते हैं, जिसके अनुसार चेतना केवल मस्तिष्क की भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। उनका प्रस्ताव है कि चेतना वास्तविकता का मूल पक्ष है, ना कि निर्जीव पदार्थ से बाद में उभरने वाला गुण। वे अनुभूति अर्थात संवेदनाओं और भावनाओं के प्रत्यक्ष अनुभव, स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत पहचान को इस प्रश्न के केंद्र में रखते हैं। उनके लिए केवल विद्युत संकेतों या सूचना प्रसंस्करण का वर्णन यह नहीं बताता कि अनुभव होने का अर्थ क्या है। इसी आधार पर वे मनुष्य और कंप्यूटर के बीच अंतर पर विचार करते हैं। पुस्तक यह चेतावनी देती है कि अत्यंत सक्षम गणनात्मक प्रणाली को चेतन मान लेना एक दार्शनिक निष्कर्ष है, स्थापित वैज्ञानिक तथ्य नहीं। यह भाग विचारोत्तेजक है, पर इसके सिद्धांत मुख्यधारा विज्ञान में सर्वस्वीकृत नहीं है। पाठक को इसे फैगन के विकसित होते वैचारिक मॉडल के रूप में पढ़ना चाहिए, न कि चेतना की समस्या का अंतिम समाधान मानना चाहिए। इसकी विशेष उपयोगिता यह है कि एक अग्रणी कंप्यूटर इंजीनियर स्वयं गणना, बुद्धिमत्ता और अनुभव के भेद को गंभीरता से जांचने के लिए बाध्य करता है। निष्कर्ष में सिलिकॉन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो माइक्रोप्रोसेसर के इतिहास को किसी बाहरी इतिहासकार की दृष्टि से नहीं, उसके निर्माण में सक्रिय रहे इंजीनियर की आवाज में समझना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, उत्पाद विकास और तकनीकी उद्यमिता के विद्यार्थी इसमें यह देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण आविष्कार, वैज्ञानिक सिद्धांत, निर्माण प्रक्रिया, डिजाइन निर्णय और संस्थागत संघर्षों के संयुक्त परिणाम होते हैं। इंटेल 4000, सिलिकॉन गेट तकनीक, Z80 और आरंभिक स्पर्श इंटरफेस के संदर्भ इसे डिजिटल युग की बुनियादी तकनीकों से जोड़ते हैं। तकनीकी भाषा से अपरिचित पाठकों को कुछ हिस्सों में धीमे पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन संस्मरण का मानवीय पक्ष उसे केवल विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहने देता। चेतना और दर्शन में रुचि रखने वालों के लिए अंतिम भाग एक अलग कारण से महत्वपूर्ण है। फैगन अनुभूति, स्वतंत्र इच्छा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो प्रचलित भौतिकवादी व्याख्याओं को चुनौती देते हैं। उनके निष्कर्षों से सहमत होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे विवादास्पद और अभी व्यापक वैज्ञानिक सहमति से बाहर है। फिर भी वे तकनीक को मानव अनुभव के बड़े प्रश्नों से जोड़ते हैं। समान तकनीकी आत्मकथाओं से पुस्तक का अंतर इसी दुर्लभ संयोजन में है। यह न तो केवल आविष्कार का उत्सव है, न केवल आध्यात्मिक संस्मरण। यह एक ऐसे व्यक्ति का विवरण है जिसने कंप्यूटिंग को बदलने के बाद यह पूछा कि गणना करने वाली मशीन और अनुभव करने वाले मनुष्य के बीच वास्तविक अंतर क्या है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं फेडरिको फैगन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।